नमस्कार भारत, तारीख 1 मई, दिन मंगलवार। मैं हूँ मानसी दाश। इसराइली प्रधानमंत्री ने कहा, ईरान कर सकता है परमाणु हथियार बनाने की कोशिश।
We've known for years that Iran had a secret nuclear weapons program called Project Ahmad. We can now prove that.
कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी के साथ नहीं दिखेंगे येदियुरप्पा। कांग्रेस बोली, भाजपा ने मानी हार।
जिसके प्रधानमंत्री उस मुख्यमंत्री पद के चेहरे के साथ जनसभा करने से भी गुरेज करते हो, ऐसी पार्टी ने तो पहले ही हार स्वीकार कर ली।
कविंद्र गुप्ता बने जम्मू कश्मीर के नए उप मुख्यमंत्री।
हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी आरएसएस के हैं, हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और देश अच्छा चला रहे हैं।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, नवीन नेगी से। ईरान ने इसराइल पर आरोप लगाए हैं कि उसने पूरी दुनिया से झूठ कहा था कि उसने कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि उसके पास अपनी बात को साबित करने के सबूत के तौर पर हजारों दस्तावेज हैं। नेतन्याहू ने इन दस्तावेजों को गुप्त परमाणु फाइलें बताया। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ईरान के विदेश मंत्री जवद जरीफ ने कहा कि इसराइल पुराने आरोपों को नया रूप देकर सामने रख रहा है। सेंट्रल अमेरिका से एक काफिले के साथ अमेरिका में शरण लेने की कोशिश कर रहे कम से कम 150 प्रवासियों को सीमा के पास रोक दिया गया है। इन प्रवासियों से कहा गया है कि सैन डिएगो की सीमा पहले ही भर चुकी है। छोटे छोटे बच्चों के साथ कई महिलाएं भी इस काफिले में मौजूद हैं, जो लगातार दूसरे दिन एक टेंट में रात गुजारने पर मजबूर हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस कैलिफोर्निया की सीमा पर बनी नई दीवार का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से कहा,
Make no mistake about it. These families, often women and small children, are victims. They're victims of open border advocates.
हम इस संबंध में कोई गलती नहीं करने वाले। ये परिवार, जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं, ये सभी इन खुली सीमाओं से पीड़ित हैं। इनकी समस्या वे लोग बढ़ाते हैं जो खुली हुई सीमाओं का समर्थन करते हैं। इनमें से बहुत से लोगों को मैक्सिको में रिफ्यूजी का दर्जा प्राप्त है, फिर भी ये अमरीका में घुसने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम अपने देश के कानून के अनुसार ही कदम उठाएंगे। ये थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के शब्द। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में सोमवार को हुए बम धमाके में कम से कम 40 लोग मारे गए। मरने वालों में बीबीसी के एक रिपोर्टर अहमद शाह भी शामिल हैं। अहमद शाह बीबीसी की अफगान सेवा के साथ एक साल पहले जुड़े थे। ब्रिटेन के नवनियुक्त गृहमंत्री साजिद जावेद पर प्रतिक्रिया देते हुए शैडो कैबिनेट की गृहमंत्री डायन एबॉट ने कहा है कि साजिद जावेद विंड्रुश पीढ़ी के लिए किस तरह के बदलाव करते हैं, इस कदम पर उन्हें आंका जाएगा। डायन एबॉट ने यह बात उस वक्त कही जब साजिद जावेद गृहमंत्री के रूप में संसद में अपना पहला भाषण दे रहे थे। डायन एबॉट ने कहा,
I believe and most British people believe that they have been treated appallingly and he will be.
मुझे ऐसा लगता है और मेरे साथ बहुत से ब्रिटिश नागरिकों को भी ऐसा लगता है कि वे विंडरूस जनरेशन के लिए क्या कदम उठाते हैं, उन्हें किस तरह से न्याय दिलवाते हैं, इन मुद्दों पर उन्हें आंका जाएगा। ये थे ब्रिटेन की शैडो कैबिनेट की गृहमंत्री डायन एबॉट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत इस मामले पर फैसला करेगी कि वेटिकन के ट्रेजरर कार्डिनल जॉर्ज पेल पर यौन दुर्व्यवहार का मामला चलाया जाए या नहीं। मेलबर्न में पिछले एक महीने से इस मामले की सुनवाई चल रही है। इसी सुनवाई के आधार पर अब फैसला सुनाया जाएगा। 76 साल के जॉर्ज पेल इस तरह के आरोपों का सामना करने वाले सबसे उम्रदराज कैथोलिक हैं। वे लगातार खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वहीं पोप फ्रांसिस ने कहा है कि जब तक यह पूरा मामला समाप्त नहीं हो जाता, वे इस संबंध में कुछ नहीं कहेंगे। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला और उनकी पत्नी को 9 महीने तक जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया गया है। इस जोड़े पर आरोप है कि उन्होंने साल 2006 और साल 2011 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हुमाला के लिए होने वाले प्रचार के लिए ब्राजील की एक निर्माण कंपनी ऑडेब्रेच से गलत तरीके से पैसा लिया था। अभियोजन पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व राष्ट्रपति हुमाला को रिहा कर दिए जाने के बाद कर दिए जाने का यह मतलब नहीं कि वे हार गए हैं। उनके पास हुमाला के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। बीबीसी समाचार।
B बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि परमाणु हथियारों के बारे में ईरान ने सभी से झूठ कहा है। उनका कहना है कि ईरान ने एक खास प्रोजेक्ट के तहत परमाणु शक्ति से लैस मिसाइलों को बनाने और उनका परीक्षण करने की योजना बनाई थी। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए नवीन नेगी से।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान पर निशाना साधते हुए कहा है कि इसराइल को मिले हजारों दस्तावेजों से इस बात का पता चलता है कि ईरान ने पूरी दुनिया से झूठ कहा था कि उसने कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की। नेतन्याहू ने इन दस्तावेजों को गुप्त परमाणु फाइलें कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान अपने इस परमाणु हथियार कार्यक्रम को कभी भी दोबारा शुरू कर सकता है।
had a secret nuclear weapons program called Project Ahmad. We can now prove
हमें सालों से पता है कि प्रोजेक्ट अमाद नाम से ईरान गुप्त परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। हम अब ये साबित कर सकते हैं प्रोजेक्ट अमाद परमाणु हथियार बनाने और उसका परीक्षण करने का कार्यक्रम था। हम ये भी साबित कर सकते हैं कि ईरान इस कार्यक्रम से जुड़ी सारी चीजें जमा करके रख रहा है ताकि सही वक्त आने पर वो परमाणु हथियार बना सके। ये थे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। इसराइल की तरफ से ईरान पर लगाए गए इन आरोपों पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
You know, in 7 years, that deal will have expired and Iran is free to go ahead.
आपको पता है कि 7 सालों में ये समझौता अपने आप खत्म हो जाएगा और उसके बाद ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए आज़ाद होगा। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। 7 साल तो कल की बात है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अभी बताया, मुझे नहीं पता किसने इसे देखा है लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ। ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती और मैं पहले से कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। अमरीकी विदेश मंत्रालय में प्रतिबंधों के लिए पूर्व उप निदेशक जॉन हूज ने पहले ईरान के साथ परमाणु समझौते पर काम किया है। वो कहते हैं,
I think, frankly, this was a political statement meant to try to influence President Trump.
सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित बयान है जो परमाणु समझौते को जारी रखने या फिर उससे बाहर निकलने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिया गया है। और इससे यही संकेत मिलते हैं कि इस समझौते को आगे बढ़ाना चाहिए ना कि इसे रद्द करना चाहिए। ये थे अमरीकी विदेश मंत्रालय में प्रतिबंधों के लिए पूर्व उप निदेशक जॉन हूज के शब्द। नेतन्याहू ने बताया कि ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े दस्तावेज अमरीका के साथ भी साझा किए गए हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में भी जमा किया जाएगा। साल 2007 में अमरीका के राष्ट्रीय खुफिया विभाग ने बड़े विश्वास के साथ ये अनुमान लगाया था कि ईरान के पास साल 2003 तक परमाणु हथियार कार्यक्रम था, लेकिन बाद में जब इस कार्यक्रम का पता लगा तो ईरान ने इसे बंद कर दिया।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अब रुक करते हैं भारत का। आज से 12वें दिन यानी 12 मई को कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। यहां चुनाव प्रचार का आखिरी दौर शुरू हो चुका है और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहां रैलियां करने वाले हैं। 5 दिन में मोदी यहां करीब 15 रैलियां करेंगे, लेकिन उनके साथ एक मंच पर पार्टी के ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा नहीं होंगे। कांग्रेस इसे लेकर सवाल उठा रही है। सुनिए बंगलुरु इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटका का अहम चुनावी दौरा शुरू कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव यहां मई के 12 तारीख को होने वाले हैं और आने वाले दिनों में मोदी 15 रैली को संबोधित करेंगे 5 दिनों में। कर्नाटका बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री को वो पर्ची पहुंच गई है कि उन्हें किन विषयों पर ज्यादा महत्व देना चाहिए। मोदी तो उनके ही खास अंग पर भी बोलेंगे, लेकिन उनके आने से बीजेपी में ये उम्मीद आ गई है कि इस समय कर्नाटका में वही होगा जो उत्तर प्रदेश और मणिपुर में हुआ। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वमन आचार्य ने बीबीसी को बताया,
वैसे लोग 6 महीने पहले ही निर्णय ले लेते हैं। कर्नाटक में हमको जो बहुमत मिलना है अबो हाफ मार्क, वो अभी भी तय है, मगर मोदी जी आने से पार्टी में और लोगों में जो उत्साह बढ़ जाएगा उसका फायदा और भी भाजपा के लिए मिल जाएगा और कर्नाटक में हम 150 सीट जीतने के लिए सब कोशिश जारी रख रहे हैं।
दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बीएस येडियुरप्पा प्रधानमंत्री के साथ मंच पर नहीं रहेंगे। बीजेपी का कहना है कि मोदी के साथ येडियुरप्पा इसलिए नहीं जा रहे हैं ताकि पार्टी के स्टार प्रचारकों का समय ना बर्बाद हो, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला इसको अलग नजरे से देखते हैं। उन्होंने कहा,
वो खुद के मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही जब अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो बताइए क्या 6.5 करोड़ कर्नाटका के लोग इसको नहीं समझ पा रहे? वो समझ पा रहे हैं, जिस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को ही नकार दिया हो, जिसके प्रधानमंत्री उस मुख्यमंत्री पद के चेहरे के साथ जनसभा करने से भी गुरेज करते हो, ऐसी पार्टी ने तो पहले ही हार स्वीकार कर ली। हमें उसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, कर्नाटक की बुद्धिमान जनता इसका निर्णय स्वयं कर देगी।
दूसरी तरफ कल शाम से ही युवक मैसूरू पैदल रवाना हो गए हैं संत मारना हल्ली के लिए, जहां मोदी अपना पहला भाषण देने वाले हैं। युवक उस संस्था के हैं जिसका नाम है काम के लिए वोट। काम के लिए वोट के संयोजक मुत्तुराज कहते हैं,
नाले मई 1 तारीख को कार्मिक दिनाचरण दिन ई दिन कर्नाटक के विदेश प्रधान नरेंद्र मोदी,
हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं ना तो काला कपड़ा दिखा रहे हैं, हम इतना ही चर्चा करना चाहते हैं कि उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां दिलवाने वाले थे और अभी तक उस मामले में क्या हुआ है। ये थे काम के लिए वोट संस्था के संयोजक मुत्तुराज के शब्द। सवाल इतना ही है, क्या मोदी सिद्धरामैया जैसे एक शक्तिशाली क्षेत्रीय नेता को हराकर बीजेपी की सरकार बना पाएंगे या नहीं? इस जवाब के लिए तो सिर्फ 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
कर्नाटक में इस वक्त शोर है नारों और दावों का। राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस, केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जनता दल सेकुलर भी चुनाव जीतकर सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन जमीन पर स्थिति क्या है? BBC संवाददाता वात्सल्य राय ने यही सवाल किया वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामासेशन से, जो कर्नाटक का दौरा कर रही हैं।
देखिए, मुझे किसी का लहर तो कहीं का नजर नहीं आ रहा है, हर क्षेत्र में अलग ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बेंगलुरु का बात लीजिए, रूरल एरियाज में आपको ये JDS का काफी बोलबाला दिखाई दे रहा है। बेंगलोर अर्बन सिटीज लीजिएगा तो वहाँ पे आपको कांग्रेस और भाजपा दोनों बराबर नजर आ रहे हैं। ओल्ड मैसूरु रीजन में जहाँ पे 65 सीट्स हैं, वहाँ पे फिर JDS बहुत अच्छी तरह लड़ रही है, कांग्रेस थोड़ा डाउन चल रही है और बीजेपी तो है ही नहीं। चंगापटना करके एक कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे फाइट में है और वो भी वो व्यक्तिगत वो कैंडिडेट के वजह से है, योगेश्वर जी के वजह से।
मुद्दे लगातार बदल रहे हैं, कभी लिंगायत का मुद्दा हावी हो जाता है, फिर कभी कन्नड़ प्राइड की बात आती है, एक अलग झंडे की बात आ जाती है, जातिवाद खास तौर पर है। जिन मुद्दों पर चुनाव में असल बात होनी चाहिए, लोगों के मुद्दे, क्या वो भी कहीं दिख रहे हैं या इस सब में खो गया है सब कुछ?
शहरों के अंदर तो सिविक इश्यूज हैं, लेकिन अब जो ही गांव में जाइए या छोटे शहरों में जाइए तो वहां पे लोग जाति के तौर पे ही वोट कर रहे हैं। लिंगायत बीजेपी की तरह, वोकली का होलसेल देवेगौड़ा वाली पार्टी की तरह, कुर्बा और मुस्लिम्स दोनों, मुस्लिम्स क्रिश्चियंस कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। जातिवाद में बटा हुआ है चुनाव गांव में। गांव में फार्मर्स के मुद्दे वगैरह हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि जातिवाद के आधार पे ही लड़ा जा रहा है यहाँ का चुनाव।
प्राइम मिनिस्टर की रैलियां शुरू हो रही हैं, कितना असर, क्या माहौल बदलेगा कुछ चुनाव में? जो चुनाव प्रचार अभी तक चल रहा है उसमें कुछ बदलाव की उम्मीद है?
बीजेपी की पूरी उम्मीद नरेंद्र मोदी पे ही टिकी हुई है। वो कह रहे हैं कि देखिए माहौल एकदम बदलने वाला है अगला 10 दिन में, प्रधानमंत्री जो आएंगे बीजेपी की यही उम्मीद है कि वो हवा बनाएंगे।
तीनों पार्टियां क्लेम कर रही हैं कि चुनाव के बाद सरकार वो बनाएंगी। कांग्रेस का कहना है कि JDS और बीजेपी के बीच कोई पैक्ट है। जमीन पर आपको क्या नजर आ रहा है?
जमीन पे एक जरूर मुसलमानों में ये मैसेज चला गया है कि चुनाव के बाद अगर कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो JDS और बीजेपी की सरकार बनने के अधिक चांसेस हैं और कांग्रेस और JDS के एक साथ आने के कम चांसेस हैं। कल से JDS ने ये भी फैलाना शुरू किया कि येदियुरप्पा जी के बेटे, सिद्धरामैया जी के बेटे के खिलाफ लड़ने वाले थे, वो जानबूझ के विथड्रॉ कर लिया ताकि सीतारामैया जी के लड़के को एडवांटेज मिल जाए। एक तरह मुझे लग रहा है कि JDS की तरफ से ये काउंटर है।
पूरे देश की नजर कर्नाटक के चुनाव पर लगी हुई है, क्या वहाँ से आप निकलता हुआ देख रही हैं? क्या देश के लिए कोई मैसेज इस चुनाव से मिलेगा?
देखिए, अगर कांग्रेस लौट जाए तो ये जो बीजेपी की जो प्रोपेगेंडा है कि कांग्रेस अपनी सरकार को दोबारा नहीं ला सकती है कहीं भी, तो अगर सीतारामैया जी लौटा देंगे कांग्रेस की सरकार तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होगा, और अगर बीजेपी अगर ये चुनाव जीत जाती है तो उतना ही बड़ा उपलब्धि होगा। फिर हमें अमित शाह और मोदी को ही देना पड़ेगा, और उन ये जोड़ी की जो लीडरशिप है दोबारा रीएस्टैब्लिश होगी और बड़े पैमाने पे। और अगर कांग्रेस हारती है तो बहुत ही बुरी खबर है कांग्रेस का, जो राहुल जी कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को फिर उठाने को, उसकी उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा।
कर्नाटक चुनाव पर राधिका रामासेशन का विश्लेषण।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
इस वक्त सुबह के 6:45 हुए हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो कार्यक्रम नमस्कार भारत। कार्यक्रम में अब रुख करते हैं बिहार का। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कल दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें यहां इलाज के लिए भर्ती किया गया था। अस्पताल का कहना है कि उनकी तबीयत में अब सुधार हुआ है। वहीं लालू ने अस्पताल से छुट्टी कर उन्हें दोबारा रांची भेजे जाने को राजनीतिक साजिश बताया है। सुनिए वात्सल्य राय की रिपोर्ट।
घोर अंधविश्वास है, बिना मर्जी के बिना प्रॉपर इलाज किए और भाजपा के साजिश से, नरेंद्र मोदी जी के साजिश से हमको फिर रिम्स अस्पताल लौटाया जा रहा है, जहां कोई सुविधा नहीं है किडनी का, कोई यूनिट नहीं है, ना जेल में है ना वहां।
दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स से कल डिस्चार्ज किए जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मीडिया के सामने अपना शिकवा इसी अंदाज में रखा। इसके पहले लालू ने एम्स के डायरेक्टर को भी एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था,
मेरी अस्पताल से छुट्टी करने की कार्रवाई हो रही है, अगर मुझे एम्स से रांची भेजा जाता है और मेरे जीवन पर इसका कोई खतरा उत्पन्न होता है तो इसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी।
दरअसल चारा घोटाला मामले में सजा होने के बाद से रांची की जेल में बंद लालू प्रसाद को तबीयत बिगड़ने पर 17 मार्च को रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। वहां से बेहतर इलाज के लिए वो 29 मार्च को दिल्ली आए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कल एम्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, एम्स रेफर किए गए लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में खासा सुधार हुआ है और उनके उपचार के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर उन्हें दोबारा रांची मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। फिलहाल उनका स्वास्थ्य स्थिर है और वो यात्रा के लिए फिट है। लेकिन रांची रवाना होते वक्त लालू खुद को अनफिट बताते रहे।
तबीयत भैया ठीक नहीं।
हाँ, क्या तकलीफ है?
माने हार्ट का है, सुगा है, चक्कर आता है, किडनी 60% खराब है।
लालू प्रसाद यादव के रवाना होने के समय उनके समर्थकों ने एम्स में जमकर हंगामा किया। वहीं उनके आरोपों को भारतीय जनता पार्टी के नेता नंद कुमार यादव ने सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कल एम्स में लालू प्रसाद और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुलाकात पर सवाल उठाए। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक की एक चुनाव रैली में कहा,
2019 का चुनाव आया है, कांग्रेस पार्टी को भय लगता है लालू जी की मदद के बगैर चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लालू जी को चारा घोटाले में सजा हो चुकी है, सजा हो चुकी है, मगर वो ही ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले राहुल गांधी आज लालू जी को मिलने के लिए जाते हैं और गले लगाकर सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस मुलाकात पर सफाई दी।
शिष्टाचार को लेकर के हुई है और राहुल जी को पता था कि लालू जी की स्वास्थ्य सुधार कुछ हुआ नहीं है और अस्वस्थ हैं लालू जी, इसके लिए वो गए थे मिलने, मुलाकात किए उन्होंने।
लालू रांची पहुंच रहे हैं लेकिन उनकी बीमारी को लेकर शुरू हुई राजनीति की गूंज अभी दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक सुनाई देती रहेगी। वात्सल्य राय, बीबीसी दिल्ली।
भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के मुताबिक पुलवामा में कल हुई एक मुठभेड़ में 2 चरमपंथियों की मौत हो गई है। इस मुठभेड़ में 2 सैनिक भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान हुए प्रदर्शनों में 1 व्यक्ति की भी मौत हो गई है। इसके विरोध में अलगाववादियों ने आज घाटी में बंद की अपील की है। ज्यादा जानकारी के लिए बीबीसी संवाददाता वात्सल्य राय ने श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
पुलवामा के द्रोबगाम इलाके में कल सुबह से ही ऑपरेशन जारी था और सेना और पुलिस का कहना था कि खुफिया सूचना मिलने पर इस इलाके का घेरा किया गया, जहां पे मोस्ट वांटेड मिलिटेंट कमांडर जो साउथ कश्मीर में पुलिस के लिए थे और आर्मी के लिए थे, जिनका नाम समीर अहमद भट्ट है और उनका एलियस है समीर टाइगर, वो अपने साथी आकिब खान के साथ एक मकान में छुपे हुए थे। तो ये एनकाउंटर शुरू हो गया। जो ही ये एनकाउंटर शुरू हो गया तो उसके बाद वहां प्रदर्शन भी शुरू हो गया एनकाउंटर साइट के करीब, जो कि अब एक नॉर्म बन गया है। लेकिन 3-4 घंटों की मुठभेड़ के बाद ये एनकाउंटर खत्म हो गया और पुलिस और सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी कि समीर टाइगर अपने साथी आकिब खान समेत इसमें मारा गया। लेकिन मुठभेड़ के दौरान एक इंडियन आर्मी का एक मेजर और एक सोल्जर जो है वो घायल हो गए।
जी रियाज साहब, ये भी जानकारी मिली है कि जब मुठभेड़ खत्म हो गई उसके बाद वहां झड़पें भी हुई हैं, कुछ इसके बारे में क्या जानकारियां हैं?
जी देखें, ये झड़पें एनकाउंटर जब जारी था उस वक्त भी जारी थी, यानी लोग मिलिटेंट्स को बचाना चाहते थे, उनको एस्केप रूट देना चाहते थे। तो उसमें जो पुलिस कार्रवाई हुई उसमें कोई 15 लोग जो हैं वो घायल हो गए, लेकिन घायलों में से एक युवक शाहिद अहमद जो आरीहल विलेज का है उनको गोली लगी थी और वो फिर उनकी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में। तो उसके बाद क्या हुआ कि अलगाववादियों ने कल ही कहा था कि आज के लिए कश्मीर बंद रहेगा।
जम्मू कश्मीर में कल 8 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें से 6 बीजेपी के हैं और 2 पीडीपी के मंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पर बीजेपी की ओर से कविंद्र गुप्ता नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। हमारे सहयोगी मोहित कंधारी ने कविंद्र गुप्ता से बात की और उनसे पूछा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की आखिर क्या जरूरत पड़ी।
रिशफल तो एक रूटीन मैटर है, बाकी स्टेट्स में भी होती है। अब इस पर मुझे लगता है कोई सवाल होना नहीं चाहिए। समय समय पर कुछ कार्यकर्ता को संगठन में रखा जाता है, कुछ संगठन से इधर, क्योंकि आने वाला जो 2019 का इलेक्शन है उसकी रणनीति बनाना हमारी पार्टी की सोच है, तो उसमें मुझे लाया गया। तो डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे सीनियर नेता है, बड़ी अच्छी तरह उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन कुछ कारणों से संगठन ने सोचा कि अब उनको इंटरचेंज इस पद को किया जाना चाहिए। उन्होंने एक बड़े महत्वपूर्ण पद पर जहां मैं था वहां पर उनको बिठाया।
सर, जो आपका अपना विजन है डेवलपमेंट का रियासत को, चूंकि दोनों तीनों खितों की जैसे आपने बात की, तरक्की करना एक जिम्मेदारी है और बीजेपी एक बड़ा एक एजेंडा लेकर,
भारतीय जनता पार्टी विशेषकर जम्मू खित्ते जिससे हमने 25 सीटें जीती थी, लोगों को बहुत सी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे इसके लिए प्रयत्न रहेगा और जो हमारी टीम है उस टीम को साथ में लेकर के चले, ऐसी हमारी सोच रही।
अच्छा सर, एक भावना है कि एक अनकंफर्टेबल अलायंस हुई थी जब हुई थी, बिकॉज परसेप्शंस थी दोनों खितों में, ये कब तक चल पाएगी आपकी नजर?
ऐसा है कि डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को हमने स्वीकारा है, नहीं करते तो एक संवैधानिक संकट बन जाता। अब जो कोलिशन धर्म हम निभा रहे हैं, कुछ मुद्दों को उनके उन्होंने छोड़ा, कुछ को हमने छोड़ा, आने वाले वक्त में ये पूरे 6 साल अपनी हुकूमत काटे, 3 साल का जो समय बहुत अच्छा रहा, बहुत स्टेट में डेवलपमेंट हुई। पहले से जो बड़े पुराने इशू थे, रेफ्यूजीज का इशू था, उसमें हम पैसे बांटे, या गंडोला को लेकर के देखा तो जो रिंग रोड का मसला था, IIM, IIMs, ऐसे बहुत से सेंट्रो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह सारे चल रहे हैं।
अच्छा सर, एक इशू है कि जो RSS का वर्कर कह के अपोजिशन का लोग टारगेट किया करते थे, और आपको लगता है कि जब जब हिंदुत्व के मुद्दों की बात आएगी और PDP जहां एक और मिलिटेंसी और स्टोन पेल्टर्स को एमनेस्टी की बात आएगी तो मतलब उसका बैलेंस कर पाएंगे उसको?
ऐसा है, RSS का प्रश्न है। RSS एक देशभक्त संगठन है, मुझे फख्र है कि मैं RSS का स्वयंसेवक हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी RSS के हैं, हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, हमारी रक्षा मंत्री, हमारे वित्त मंत्री सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और देश अच्छा चला रहे हैं, लोगों को अपेक्षाएं हैं। तो जहां तक स्टोन पेल्टर्स की बात है, ये आज शुरू नहीं हुआ, बड़ी देर से हमारी सरकार में आकर ये चीज़ें रुकी, कहीं ना कहीं कम हुई है, लेकिन मैं नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो गया, बहुत कुछ करना बाकी है। गले से लगाकर तो चलना होगा, लोगों के जो नौजवानों में कुछ इस प्रकार की वृत्तियाँ आई हैं उस वृत्ति को चेंज करना होगा।
जो एक बड़े मुद्दे हैं रीजनल इम्बैलेंस की बात, डिस्क्रिमिनेशन की जो बात की जाती है जम्मू खित्ते के साथ लद्दाख खित्ते की, लंबे समय से यूनियन टेरिटरी स्टेटस की मांग है, वो जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं आप सर?
हम इस पर विचार करेंगे, नई टीम आई है उस पर बैठेंगे, जो भी इस प्रकार के इश्यूज हैं उन पर पहले चर्चा हो, उसके बाद उसको कैबिनेट में लाया जाए, इस प्रकार हमारी कोशिश रहेगी।
सर, अब आपका जो अवाम के लिए और एक जनता के लिए आपका एक संदेश रहेगा कि जब आप कार्यभार संभालने जाएंगे?
मैं जम्मू की जनता को ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार आपके लिए काम करेगी, हम लोगों को जनमानस को साथ में लेकर के चले और जनमानस की भागीदारी हमारे सरकार के कार्यों में और दूसरे कार्यों में हो तो मुझे लगता है कि ये देश बेहतर बन पाएगा, इस देश को, समाज को, उसके लिए हमें सोचना है।
अब जानते हैं कि आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों ने कौन सी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। नवीन नेगी अखबारों के पन्ने पलट चुके हैं। नवीन, बताएं क्या छपा है आज अखबारों में?
मानसी, आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में अफगानिस्तान में जो कल बम धमाका हुआ उसकी खबरें छाई हुई हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक तस्वीर अपने पहले पन्ने पर छापी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 9 पत्रकार भी इस बम धमाके का शिकार हुए। हालांकि अलग अलग अखबारों में ये आंकड़े अलग अलग हैं। मेरे सामने जनसत्ता भी रखा है, उसमें 10 पत्रकार बताए गए हैं। तस्वीर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें एक आम नागरिक है काबुल का, जो कि एक मीडिया कर्मी को उठाने का प्रयास कर रहा है। साथ में इसी तस्वीर में कहीं पर कैमरे भी लगे हुए हैं जो दिखाता है कि मीडिया पर यह हमला हुआ था। दूसरी खबरों की तरफ मुड़ें तो जम्मू कश्मीर में जो कल 8 मंत्रियों ने शपथ ली है उसकी खबरें भी सभी अखबारों में छाई हुई हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तुरंत बाद ही जो कविंद्र गुप्ता हैं उन्होंने कठुआ कांड को एक छोटी मोटी घटना बता दिया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने अपने पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने कहा कि कठुआ बलात्कार और हत्याकांड एक छोटी मोटी घटना है जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। और अखबार लिखता है कि गुप्ता ने कहा कि कठुआ की घटना छोटी सी चीज़ है, हमें इस पर विचार करना होगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि ट्विटर ने भी एनालिटिका के साथ अपने यूज़र्स का डाटा बेचा था। ये खबर दैनिक भास्कर में छपी है और इसमें लिखा गया है कि ट्विटर ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को 2015 में अपने यूज़र्स का डाटा बेचा था। ब्रिटेन के अखबार द संडे टेलीग्राफ के हवाले से ये खबर छापी गई है जिसमें बताया गया है कि एनालिटिका के फाउंडर अलेक्जेंडर कोगन ने 2015 में ट्विटर से उनके यूज़र्स का डाटा खरीदा था और इसके लिए उन्होंने ग्लोबल साइन रिसर्च नाम की एक कंपनी बनाई थी जिसे यूज़र्स के ट्विटर डाटा तक पहुँच बनाने की अनुमति दी गई थी। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज के अखबारों में छाई हुई हैं।
धन्यवाद नवीन। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अपनी कोचिंग में इसी साल भारत की अंडर 19 टीम को विश्व कप जिता चुके राहुल द्रविड़ का नाम द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भेजे जाने पर बीसीसीआई में विवाद पैदा हो गया है। खबरों के मुताबिक बीसीसीआई की कुछ अधिकारियों ने द्रविड़ के नाम पर एतराज जताया है। इन अधिकारियों का मानना है कि द्रविड़ के पास कोचिंग के स्तर पर अभी कम अनुभव है। कईयों का ये भी मानना है कि द्रविड़ का नाम भेजा जाना उन कोचों के साथ अन्याय होगा जो वर्षों से उभरते हुए क्रिकेटरों की सहायता कर रहे हैं। इस पूरे विवाद के बारे में वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन कहते हैं,
देखिए जहाँ तक मेरी सोच है मुझे लगता है कि ये डिजर्विंग है क्योंकि ये अंडर 19 टीम के कोच रहे हैं और वो अंडर 19 टीम जो है वर्ल्ड कप जीती हुई है और उनका कंट्रीब्यूशन अंडर 25 टीम के लिए या इंडिया ए टीम के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रहा है। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी कुछ कोचिंग असाइनमेंट्स लिए हैं या मेंटरशिप लिए है, जैसे आईपीएल में भी उन्होंने पहले राजस्थान के साथ और दिल्ली के साथ जुड़े हुए थे। तो ओवरऑल अगर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखे एज अ मेंटर एज अ कोच, हालांकि बहुत लंबे अरसे का नहीं है, जैसे 5 साल पहले 6 साल पहले तो वो खेल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अगर कंट्रीब्यूशन आप देखें कोई अचीवमेंट होता है तो मुझे लग रहा है डिजर्विंग है।
वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए खेले जाने वाली 4 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत एडिलेड में डे और नाइट टेस्ट मैच से कराना चाहता है। इसके लिए वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को मनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अब तक दूधिया रोशनी में टेस्ट मैच नहीं खेला है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस साल के आखिर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ डे और नाइट टेस्ट मैच खेल सकता है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और कार्यक्रम की समाप्ति से पहले एक बार फिर समाचार सुनिए नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। इसराइल ने ईरान पर आरोप लगाए हैं कि उसने पूरी दुनिया से झूठ कहा था कि उसने कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिशें नहीं की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए ये बात कही। सेंट्रल अमेरिका से एक काफिले के साथ अमेरिका में शरण लेने की कोशिश कर रहे कम से कम 150 प्रवासियों को सीमा के पास ही रोक दिया गया है। ब्रिटेन के नवनियुक्त गृहमंत्री साजिद जावेद पर प्रतिक्रिया देते हुए शैडो कैबिनेट की गृहमंत्री डायना एबॉट ने कहा है कि साजिद जावेद विंड्रोश पीढ़ी के लिए किस तरह कदम उठाते हैं इस पर उन्हें आंका जाएगा। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आज स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अभिमन्यु साहा ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम के 7:30 बजे दिन की दूसरी सभा दिन भर में। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com से। फिलहाल सभी साथियों समेत मानसी दास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।